الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: بل ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء ثقالة، وثقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیسے کریں؟ یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے. دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام انسان سیکھتا ہے تو کرنا آتا ہے. ایک بچی گھر کے اندر کھانا پکانا سیکھتی ہے، پھر اچھا کھانا پکانے والی بن جاتی ہے. کپڑے سینا سیکھتی ہے، پھر وہ اس فن کو جان لیتی ہے. ہر چھوٹے چھوٹے کام کو سیکھنا پڑتا ہے. مشائخ نے فرمایا: ہر آن کارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے، جان لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. جس طرح کوئی بچی بیمار ہو تو وہ اپنی من مرضی سے گولیاں استعمال نہیں کرتی، ٹیبلٹس استعمال نہیں کرتی، بلکہ کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتی ہے کہ جو اس کی بیماری کے بارے میں اس کو میڈیسن پرسکرائب کر سکے. اور جب وہ میڈیسن استعمال کرتی ہے تو تھوڑے دنوں میں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر باطنی بیماریاں ہیں: حسد، کینہ، بغض، غضب، شہوت، بخل، حرص. یہ سب کی سب باطنی بیماریاں ہیں. ان کے علاج کے لیے بھی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. اب کس ذکر کو کیسے کریں، اس کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت ہے. ہر انسان کی طبیعت کے مطابق بیماری کی دوا مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر انسان کی شخصیت کے مطابق اس کا ذکر مختلف ہوتا ہے. اگر کوئی خود ہی ذکر کرنا شروع کر دے تو کئی مرتبہ باطنی بیماریاں گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ جاتی ہیں. جیسے انسان اپنی بیماری کا خود علاج شروع کر دے تو اس کا مرنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو انسان بنا سیکھے ذکر کر لے تو روحانی موت مرنا آسان ہوتا ہے. शैतान इंसान को बहका देता है। हमने तो यहां तक देखा कि कोई डॉक्टर बीमार होता है तो अपनी दवा खुद इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि दूसरे डॉक्टर को चेकअप करवा के फिर थर्ड ओपिनियन लेने के बाद अपनी दवाइयां इस्तेमाल करता है। हम बातनी बीमार हैं या नहीं, इसकी एक आसान सी अलामत यह है कि अगर हम लोगों के सामने और हैं और तन्हाई में और हैं, जाहिर में और हैं, अंदर खाने और हैं, अपने गुनाहों को छिपाते फिरते हैं, तो ये दोगलापन बीमारी की अलामत है। एक दूसरी अलामत, कुरान मजीद नबी अलैहि सलाम की बीवियो तुम पर्दा करो, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ऐसा ना हो कि तमा करे वो बंदा जिसके दिल में मर्ज है। तो कुरान पाक की आयत से पता चला कि जब किसी गैर महरम को देख के दिल में तमा पैदा हो, लालच पैदा हो, गुनाह की तरफ ध्यान जाए, तो ये इंसान के दिल में मर्ज होने की दलील होती है। जब कोई इंसान दोगली जिंदगी गुजारे तो ये दोगलापन मर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो ये बातनी बीमारियां हैं, इनका इलाज करवाना पड़ता है। दुनिया में जिस्मानी डॉक्टर को तबीब कहते हैं और रूहानी बीमारियों के डॉक्टर को मुर्शिद और पीर कहते हैं। उसकी कुछ निशानियां हैं, जैसे डॉक्टर वही होता है कि जिसने इल्म हासिल किया हो, हाउस जॉब की हो, डॉक्टरों की जेरे निगरानी रहकर उसने इस काम को सीखा हो और फिर उसे दूसरों की बीमारियों का इलाज करने की इजाजत मिल गई हो। इसी तरह शेख भी वो होता है कि जिसने किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर अपनी बीमारियों का इलाज करवाया हो, जिसके पास शरीयत और सुन्नत का इल्म हो, जिंदगी उसके मुताबिक हो और उसको शेख ने दूसरों को अल्लाह अल्लाह सिखाने की इजाज़त दी हो, तो ऐसे शख्स को शेख कहते हैं। अगर कोई आदमी खुद साख्ता शेख बन जाए तो ये ऐसा ही है कि जैसे कोई आदमी हाउस जॉब किए बगैर डॉक्टर बन जाए। ऐसे शेख से ये ताल्लुक जो इख्तियार किया जाता है, इसको बैत कहते हैं। जैसे लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, हर बीमारी में उसी से रुजू करते हैं, और यही बेहतर होता है कि एक ही डॉक्टर से रुजू किया जाए, क्योंकि वो बंदे की फिजिकल हिस्ट्री से वाकिफ होता है। इसी तरह शेख के साथ जो ताल्लुक रखा जाता है वो रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए। जब आप किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं, उस फॉर्म पे आपकी ब्रीफ हिस्ट्री भी लिखते हैं, कवायद भी लिखते हैं और फिर आपकी डायग्नोसिस भी उसी पर लिखते हैं। ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है पेशेंट की किसी डॉक्टर के पास। इसी तरह शेख की खिदमत में बैठ के चंद कलिमात तौबा के पढ़ लेना, ये हकीकत में उस बंदे की रजिस्ट्रेशन हो जाती है उस शेख के पास। ये एक बाज़ाबता तरीका शरीयत ने बना दिया कि जिस तरह इंसान अपना रूहानी ताल्लुक अपने शेख के साथ जोड़ सकता है। यूं तो तौबा इंसान घर के कोने में भी बैठकर कर सकता है, मगर उस तौबा की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गारंटी नहीं है, वादा नहीं है। वो चाहे तो कबूल करे और चाहे कबूल ना करे। लेकिन एक ऐसा तरीका है कि जिस तरीके में اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنٹی ہے کہ اگر تم اس میرے محبوب کے سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دو آدمی آپس میں کوئی بات طے کرتے ہیں، سادہ کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں اور کورٹ میں پھر بعد میں کسی موقع پہ جاتے ہیں تو کورٹ والے اس سادہ کاغذ کے رائٹ اپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسٹام پیپر لائیے، یہ ایک خاص کاغذ ہوتا ہے چھپا ہوا، ٹکٹ اس پر لگتے ہیں، اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کمٹمنٹ لکھ کر دے دے تو پھر قانون اس کی حیثیت کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اسی طرح گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کی مانند ہے اور کسی شیخ کی موجودگی میں توبہ کرنا اسٹام پیپر پر توبہ کرنے کی مانند ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لی۔ بیعت کہتے ہیں پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جزو پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں کی بیعت لی ان میں سب سے پہلے بیعت اسلام تھی، یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ اس کی مثال جیسے بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانی، نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ کے لوگ حج پہ آتے تھے اور منا میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے، اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا عہد کرنا چاہے تو وہ بیعت کرے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ بیعت بھی کی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ فتحہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی، صحابہ کرام کو اس پہ بڑا ناز تھا، بڑا دل میں خوشی تھی اور اس وجہ سے وہ خوشی میں شعر پڑھا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، صحابہ کرام یہ بیعت بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر، مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں۔ مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں، عبادہ ابن صامت اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں وکان شہید بدرن، بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے، یعنی بدری صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر نقباء میں سے ہیں۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے نبی الاسلام کے ہاتھوں پر منا میں اسلام قبول کیا ہوا تھا اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زید بن ثابت لانو کی امارت میں تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے، اتنے جلیل القدر صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ہمیں فرمایا تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے، ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی کس بات پر بیعت کریں، فرمایا تم شرک نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، کچھ گناہ گنوا دیے، ہم نے کہا ہم حاضر ہیں، چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی الاسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں. اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات، نہیں، نہ یہ مشرکہ ہیں نہ کافرہ ہیں نہ منافقہ ہیں. کون ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات، یہ مؤمنات ہیں، صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے. اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنینا، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو گی، ولا یاتینا بے بہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، ولا یاسینک فی معروف، اے محبوب، کسی بھی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی سنت پر عمل کی کوشش کریں گی. یہ ان کے آنے کا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں. فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ، یہ ہے اصل راز بیعت کا، کہ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی، آئی جو اس نیت سے ہیں، اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. مفسرین نے لکھا اللہ تعالی نے ان کی تاکید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا. لہذا جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا، ان کی مہر ہے، اللہ تعالی کی طرف سے گارنٹی ہے، انڈورسمنٹ ہے کہ میرے بندو اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں پروردگار ضرور قبول کروں گا. تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور شیخ بھی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نائب رسول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اس امت کے علماء صلحاء کے کندھوں پر رکھ دیا، لہذا وہ نائب بن کر، وکیل بن کر کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان کو مشائخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کا کام سیدنا ابوبکر صدیق نے سنبھالا، ان کا کام آگے چلتے 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 ہمارے پاس باقاعدہ مشائخ کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، اور اس عاجز کے شیخ نے اس عاجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم فرمایا. اسی لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور پھیلانے کی خاطر یہ عاجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے، اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے. اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب بتائیے، اگر صحابیات نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیعت کی، تو اگر آج کی کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی؟ نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے اس زمانے میں تھی، یہ سنت آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی. چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. اور یہ مشائخ ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو. دیکھیں نا، آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں तो साफ जाहिर है कि पहले साबुन से नहाती हैं, जिस्म कपड़े साफ सुथरे होते हैं, फिर खुशबू लगाती हैं। पसीने वाले जिस्म पे तो खुशबू कोई अकलमंद नहीं लगाता। इसी तरह जो इंसान जिक्र अज़कार करना चाहे तो वो पहले बैत के जरिए बातनी गुसल कर ले और फिर अल्लाह के जिक्र, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ वगैरह के अज़कार करे ताकि इनकी खुशबू उस पर आ जाए। तो ये बात समझनी तो बहुत आसान है, इसमें कोई रुकावट नहीं। दुनिया के उलूम सीखने के लिए दुनिया के उस्ताद की ज़रूरत होती है और दीन का इल्म सीखने के लिए दीनी उस्ताद की ज़रूरत होगी। फ़र्क इतना है कि मर्द तो अपने शेख की सोहबत खिदमत में बैठकर सामने सीखते हैं और औरतें पर्दे में रहकर मर्दों के वास्ते से सीखती हैं। वाज़ो नसीहत की महफिल में आ सकती हैं, शेख के बताए हुए मामूलात को कर सकती हैं। इतना करने से अल्लाह ताला उनके दिलों को भी साफ फरमा देता है। अल्लाह ताला ने विलायत का मैदान मर्दों के लिए भी खुला रखा, औरतों के लिए भी खुला रखा। इसलिए इस उम्मत में कितनी औरतें ऐसी गुजरी जो बड़ी वलिया बनी। राबिया बसरिया, अल्लाह की नेक बंदी, इतनी बड़ी आरिफा थी कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरस कुरान देने के लिए उनका इंतजार करते थे। लोग पूछते, हजरत दर्स शुरू करें, देर हो रही है, अगर वो बूढ़ी औरत ना भी आई तो क्या हुआ? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो गिजा मैंने हाथियों के लिए तैयार की वो तुम चींटियों को मैं कैसे खिला दूं। इतना उनकी मार्फत थी अल्लाह ताला के बारे में। और इस उम्मत में कितनी नेक बीवियां ऐसी गुजरी हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला की मार्फत के नूर से अपने सीनों को भर लिया। तो ये इसको बैत कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकात होती हैं। क्योंकि इस मौजू पर खुल के बात करने की कभी फुर्सत न मिली, मौका न मिला, आज पहली मरतबा इस पर बात कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ी सी कारगुजारी भी आपके सामने कह दें ताकि आपको तारफ हो जाए कि इस रास्ते पर कैसे बंदे की जिंदगियां बदलती हैं। ये आज एक मरतबा किसी एयरपोर्ट पर बैठा था, काफरों का मुल्क था, एक नौजवान देखने में बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी अपने हाथ में शराब की बोतल लिए पीता हुआ जा रहा था। जब करीब से गुजरा और उसने इस आजिज की तरफ देखा तो 5-10 कदम आगे जाने के बाद फिर वापस आया और हेलो हाय करने के बाद मुझे कहता है, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। मैंने उसकी तरफ देखा कि मुंह से शराब की बू आ रही है, हाथ में उसने शराब की बोतल पकड़ी हुई है। ये आजिज समझा कि शायद ये इस वक्त अपने होश में नहीं, परवाज कर रहा है, और इसको फकीर का ये लिबास अच्छा लगा तो पूछा कि आपको ये पगड़ी, अमामा और जुब्बा वगैरह अच्छा लगा? कहने लगा, नो, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आई सी सम लाइट ऑन योर फेस, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पे मुझे कुछ रोशनी महसूस हो रही है। दिल में फौरन ख्याल आया कि अल्लाह, हो सकता है इसके लिए हिदायत का वक्त हो। तो इस आजिज ने कहा कि यू कैन बी इवन बेटर देन मी, आप तो मुझसे भी बेहतर हो सकते हैं। वो कहने लगा, ओके, आई एम जस्ट कमिंग। सामने एक वॉशरूम था, वो नौजवान सीधा उसमें चला गया और उसने देखते देखते वो बोतल शराब की ट्रैश कैन के अंदर फेंक मारी और फिर उसने अपना हाथ मुंह धोया, कुल्ली की, फ्रेश अप हुआ और फ्रेश अप होके फिर इस आजिज के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा ये मेरा नाम है, मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमएससी की हुई है और एक कंपनी के अंदर मैं मैनेजर के तौर पे काम करता हूं। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी जवानी दी, खूबसूरती दी और मेरी जॉब बहुत अच्छी है और मेरे ऑफिस में इधर उधर इर्द गिर्द हर तरफ लड़कियां काम करती हैं। मेरा कोई दिन गुनाह के बगैर नहीं गुजरता, मुझे दाएं बाएं कहीं ना कहीं से रोज गुनाह की ऑफर होती है और मैं डेली गुनाह करता हूं। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूं। फिर कहने लगा कि मेरे बारे में ये समझ लें, आई ईट एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग। इन दो लफ्जों में उसने अपनी पूरी जिंदगी की तरतीब बता दी, आई ईट एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग। अब ऐसी उस नौजवान की जिंदगी, और वो कहते हैं कि जी मैं नेक बनना चाहता हूं। इस आजिज ने उसे बताया कि भाई तौबा के कलिमात पढ़ो और एक जिक्र कल्बी का तरीका है, ये आजिज आपको बताएगा करना, इसकी बरकत आंखों से देखना। वो कहने लगा मगर मुझे ये बताएं कि मैं गुनाह से कैसे बच सकता हूं, ये जो मेरे आगे पीछे हर वक्त हूर परियां फिरती हैं ये मुझे गुनाह से पीछे रहने नहीं देती। इस आजिज ने कहा कि आपके लिए बचना मुश्किल है, अल्लाह ताला के लिए बचाना आसान है। आप इस अमल को कर देखो, इसकी बरकतें देखना। कहने लगा ठीक। वहीं बैठे बैठे इस आजिज ने उसको बैठ के कलिमात पढ़ाए और यही जिक्र का तरीका समझाया और वो बच्चा भी चला गया नौजवान और ये आजिज भी अपनी फ्लाइट पर चला गया। 3 महीने के बाद उसका खत आया, इस आजिज ने अब भी उसको अपने रिकॉर्ड में महफूज रखा है। तो उस खत में उसने दो बातें लिखी। पहली बात तो उसने ये लिखी कि मैं 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता ही हूं, कभी कभी मुझे तहज्जुद की भी नमाज नसीब हो जाती है। ये उसने पहली पहला पॉइंट लिखा कि मैं 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता ही हूं, कभी कभी मुझे तहज्जुद की भी तौफीक नसीब हो जाती है। और दूसरा पॉइंट उसने लिखा, मैं इस बात पे हैरान हूं कि गुनाहों के समुंदर में रहते हुए मैं गुनाहों से कैसे बचा हुआ हूं। इस आजिज ने फिर उसका जवाब तफसीली लिखा और उसको समझाया कि हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, हमारे बड़ों की दुआएं हमारे गिर्द पहरा दिया करती हैं, हमारे बड़ों की दुआएं हमारे गिर्द पहरा दिया करती है, दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। अल्लाह ताला बंदे की गुनाहों से हिफाजत फरमा लेते हैं। मुल्तान शहर में एक दफा इस आजिज ने बयान किया, जब बैठ के लिए लोग इकट्ठे हुए तो इस आजिज ने देखा कि एक आदमी दूसरे को कह रहा है कि तुम भी बैठ हो जाओ, तुम भी बैठ हो जाओ। वो कहते हैं हो जाऊंगा हो जाऊंगा। इस आजिज ने जब देखा तो उसे कहा कि भाई क्यों पुश कर रहे हो, ये तो खुशी की बात है, दिल के सौदे हैं। तो वो आदमी फिर इस आजिज के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू करने लगा। कहने लगा हजरत मैं इस इलाके का पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हूं, इंचार्ज हूं, ये मेरे बड़े भाई हैं, खुद भी बैत होना चाहते हैं और मुझे भी कहते हैं बैत करने के लिए, मगर मैं क्या बैत करूंगा, आपको पता ही है कि पुलिस वालों की जिंदगी क्या होती है। इस आजिज ने कहा कि आपके लिए भी नेकी का रास्ता खुला है, वो आगे से इंस्पेक्टर आगे से कहते हैं, हजरत मेरी जिंदगी इतनी गंदी है जो गुनाह आप सोच सकते हैं वो गुनाह मैंने किया हुआ है। अब बताइए कि जो बंदा अपनी जुबानी कह रहा है कि जो गुनाह आप सोच सकते हैं वो गुनाह मैंने किया हुआ है, इस आजिद ने कहा कि इसके बावजूद आपके लिए भी नेकी का रास्ता खुला है। वो कहने लगा अच्छा हजरत फिर मुझे भी बैत कर ले। वो इंस्पेक्टर पुलिस का बैत हो गया। ये आजिद फिर अगली जगह चला गया। कोई 4 महीने के बाद दोबारा फिर उसी जगह गुलगश्त कॉलोनी में जाने का मौका मिला। असर की नमाज पढ़ी तो जैसे ही जाने के लिए उठे कोई आदमी आया और उसने पीछे से आपके बंदे को हग किया। अब ये आजिद बड़ा हैरान कि यहां कोई मेरा बचपन का क्लास फेलो तो है नहीं कि जो इस किस्म की बेतकल्लफी की हरकत करे। ये कौन आदमी है जिसने आके मुझे पीछे से हग करके जकड़ लिया। थोड़ी देर तो सब्र किया, जब छोड़ा तो उसका चेहरा देखा तो कोई छोटी छोटी उसके चेहरे पर दाढ़ी। तो फौरन देन में ख्याल आया कि ये तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है। इस आजिद ने कहा ओ थानेदार साहब क्या हाल है। तो जब ये कहा तो उसने फौरन आगे से जवाब दिया हजरत थानेदार तो उस दिन मर गया था, अब आपका गुलाम जिंदा है। फिर मस्जिद के नमाजियों के सामने उसने कहा ऑन ड्यूटी SHO, कहने लगा हजरत मैं अपने चेहरे पर सुन्नत भी सजा ली है, नेक बन गया हूं, मैं तहज्जुद की नमाज रोजाना घर में पढ़ता हूं और फजर की अजान रोजाना इस मस्जिद में आकर मैं खुद दिया करता हूं। ऐसी बरकत के इलाके का ऑन ड्यूटी SHO घर में तहज्जुद पढ़ता है और महल्ले की मस्जिद में आके फजर की अजान देता है। यूं अल्लाह ताला जिंदगियों को बदल देते हैं। इस बैत और निस्बत की अल्लाह के यहां बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला बंदे को जाहिरी मुसीबतों से भी बचाते हैं और अल्लाह ताला अखलाकी मुसीबतों से भी बचाते हैं। चुनाचे एक नौजवान फैक्ट्री में मैनेजर था, इस आजिज का कुलीग था किसी जमाने में। एक दफा वो मेहमान खाने में आया, हथकड़ी लगी हुई, 2 पुलिस वाले साथ हैं। ये आजिद देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने MSc केमिस्ट्री की हुई थी, MBA किया हुआ था, बड़ा लर्निड बच्चा था और एक मैनेजर के तौर पे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। इस हालत में देख के ये आजिद बड़ा हैरान हुआ, पूछा क्या बना। कहने लगा हजरत मेरे ऊपर इस वक्त कत्ल का मुकदमा है, मैं जेल से सुपरिंटेंडेंट पुलिस से स्पेशल इजाजत लेकर आपसे दुआ करवाने के लिए आया हूं और ये पुलिस वाले मेरे साथ हैं। पूछा बना क्या। उसने अजीब ही स्टोरी सुनाई। कहने लगा बड़े भाई की शादी हुई अपनी फर्स्ट कजन के साथ, 4-6 महीने बड़े अच्छे गुजरे। एक दिन मामूली बात पे कोई दोनों में बहस तकरार हो गई तो मेरी भाभी रूठ कर अपने मेके चली गई। हमारे गांव से उनके गांव का फासला कोई 1 मील का, आमने सामने गांव है। मैं जब शाम ड्यूटी से वापस घर गया पता चला कि भाभी रूठ के चली गई। मैंने बड़े भाई को समझाया कि नहीं, वी आर सेम ब्लड, हमें जाना चाहिए और भाभी को मना के लाना चाहिए। ये नौजवान अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड फिगर थी और सबसे ज्यादा एजुकेटेड फिगर थी, तालीम याफ्ता और पूरे फैमिली का सबसे ज्यादा बाइज्जत शख्स था, पूरा शहर इसकी इज्जत करता था। इतने अच्छे अखलाक वाला, इतना प्यारा नौजवान। कहने लगा मैंने अपने भाई को गाड़ी में बिठाया, मैंने कहा चलो भाभी को लेके आता हूं। उनके घर गए बड़े अच्छे तरीके से मिले, उन्होंने चाय बनाई, बिस्किट दिए, खाए पिए। मैंने भाभी से कहा कि भाभी हमारा ताल्लुक एक नहीं कई तरह का है, छोटी बातों पे नहीं रूठा करते, चलें आप घर चलें। भाभी भी तैयार हो गई, उसने भी अपनी सामान समेट लिया, सामान गाड़ी में हमने रख लिया। जब बैठने लगे भाभी ने कोई बात कर दी, जिस लफ्ज को सुनकर मेरा भाई फिर भड़क उठा, उसने भी कोई सख्त लफ्ज कह दिया, तो भाभी आगे से बोल पड़ी, भाई बोल पड़ा, दोनों ने एक दूसरे से फिर बहस तकरार शुरू कर दी। तो भाभी का छोटा भाई आ गया, कौन होते हो मेरी बहन को तुम इस तरह कहने वाले। अब औरत की जो लड़ाई थी वो मर्दों में आ गई, दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। जब दोनों में हाथापाई होने लगी तो उसका एक भाई भागा और अपने कमरे के अंदर से गन निकाल के लाया कि तू कौन होता है मेरे भाई पे हाथ उठाने वाला। अब जब वो करीब आया तो मेरे भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उसके गन के रुख को जो मोड़ा तो वो उसी की तरफ हो गया जिसके हाथ में गन थी और ट्रिगर दब गया। झगड़े के अंदर वो जो बंदूक चली तो जो लाने वाला बंदा था वो खुद मौके के ऊपर उसी वक्त ढेर हो गया, मर गया। हम तो इस जहन में सोच भी नहीं सकते थे कि ये वाकया पेश आएगा। मैंने उन्हें कहा कि इसको उठाएं हॉस्पिटल ले जाते हैं, मगर वो तो उसी वक्त ही ठंडा हो गया। उसके भाइयों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी भाभी कहने लगी कि हाँ इस पे मुकदमा बनवाएंगे और हम अपने भाई के बदले में इसको फांसी लगवाएंगे। तो मेरा भाई तो भाग गया। अब वो भाभी ऐसी चलाक के अपने खाविंद को बचा रही है और मुझे कहने लगी कि इसको फांसी चढ़वाएंगे, ये इनके खानदान का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बंदा है। पुलिस आ गई, मैं मुजरिम के तौर पे मौके पे पकड़ा गया, डेड बॉडी भी मिल गई, गन भी मिल गई, गवाह भी मिल गए, जो कुछ किसी बंदे के कत्ल का प्रूफ हो सकता है वो सब का सब 100% मौजूद था। मुझे जेल पहुंचा दिया गया, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी गई। मेरे वकील ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा ऐसा जबरदस्त दर्ज किया है कि आपके बचने की 100 में से एक हिस्सा भी उम्मीद नहीं है। दीवार पे लिखा मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मैं दुआएं करता रहा, आपका ख्याल आया तो मैंने आपके बारे में पता करवाया, तो पता चला कि बैरून मुल्क गए हुए थे। कल पता चला कि आप वापस आए हैं, तो मैंने फिर पुलिस जो जेल का सुपरिंटेंडेंट था उससे बहुत बड़ी कोई सिफारिश करवा के इजाजत ली कि मैं आपसे दुआ करवाने के लिए आना चाहता हूं, क्योंकि वो भी आपको जानता था। उसने पुलिस वालों को साथ भेज दिया कि जाओ पीर साहब से दुआ करवा के आओ। इसलिए अब मैं यहां आया बैठा हूं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपका कोलीग हूं, इतना मैं आपका मोहब्बत करने वाला दोस्त हूं, मुमकिन है मेरी आपकी आखिरी मुलाकात हो। और ये कह के उस नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। अब एक बेगुनाह नौजवान, और उसकी उम्र भी कोई 28 साल सारी थी, और उसकी शादी में भी अभी कोई 6 महीने थे जो होनी थी, इतनी प्यारी उसकी शख्सियत पर्सनैलिटी, इतने मोटे मोटे आंसू उसके गिर रहे हैं और कह रहा है कि ये मेरी और आपकी मुमकिन है आखिरी मुलाकात हो। कहने लगा बताएं मैं क्या करूं। इस आजिज ने उसे बताया कि एक नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मशायख के जरिए इस आजिज के सीने में डाली है, आप उस निस्बत के अपना ताल्लुक जोड़ें और अल्लाह के हुजूर उस निस्बत को पेश करें। अल्लाह ताला के यहां निस्बत की बड़ी लाज है। उसने कहा जो कहेंगे मैं करने को तैयार। चुनाचे इस आजिज ने उसको यही बैत तौबा के कलिमात पढ़ाए और उसको जिक्र मुराकबे का तरीका बताया और ये बात समझाई कि जब भी नमाज पढ़ना बस ये दिल में दुआ करना कि ए अल्लाह میں ان مشائخ کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والا ایک غلام ہوں، ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، ان مشائخ کی برکت سے مجھے مصیبت سے نجات عطا فرمائی. وہ نوجوان نم والی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا، خرنم آنکھوں سے چلا گیا. اس عاجز کو پھر کہیں باہر جانا تھا ملک میں، پھر چلا گیا. 3-4 مہینے کے بعد پھر واپس جب اپنے ملک میں پہنچا تو گھر میں تھا کہ بیٹے نے ایک مٹھائی کا بڑا ڈبہ لا کر دیا کہ جی کوئی مہمان خانے میں آدمی آئے ہیں، انہوں نے سلام بھیجے ہیں اور مٹھائی آپ کے لیے لائے ہیں. مٹھائی کے ڈبے پر دیکھا تو ان کا نام لکھا ہوا تھا. آج اس بڑا حیران ہوا، فوراً مہمان خانے میں پہنچا، دیکھا تو وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے تھا. میں نے پوچھا کہ آپ آزاد ہو گئے، بچ گئے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی کرامت ہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ترس کیا. بھئی کیسے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو سرجن اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے اس کے جسم سے جو گولی نکالی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی پیمائش تو اس نے ملی میٹر میں کی مگر غلطی سے لکھتے ہوئے اس کو انچ یونٹ میں اس نے لکھ دیا. یعنی سائز اس کا ملی میٹرک سسٹم میں اس نے لیا مگر بائی مسٹیک جو پیپر پر اس نے لکھا تو اس نے 7 انچ سکیل لکھ دی. کہنے لگا کہ جب جج کے سامنے کیس پیش ہوا تو جج نے بلٹ کو دیکھا اور اس کا سائز پڑھا تو جج نے کہا کہ سرجن جو کہہ رہا ہے کہ اس بلٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی یہ وہ گولی تو نہیں ہے. اب جب اس پر بات آگے بڑھی تو معاملہ شک میں آ گیا اور قانون یہ ہے کہ جب کسی میں شک آ جائے تو پھر اس بندے کو پھانسی نہیں دی جاتی. جج نے اس کو بنیاد بنا کر مجھے باعزت بری کر دیا. یہ نسبت کی برکتیں ہیں، اللہ رب العزت یوں مصیبت سے بندوں کو بچا دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب، ہم ان کو کہتے ہیں، جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ان کے زیر سرپرستی چل رہا ہے، اپنے علاقے کے نواب ہیں. یہ عاجز بخاری شریف کی ابتدا کے لیے، افتتاح کے لیے یا آخری درس کے لیے وہاں حاضری دیتا رہتا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک کزن ہے، بڑا لینڈ لارڈ ہے اور اس پورے علاقے کا ایم این اے ہے، ممبر نیشنل اسمبلی، اور وہ 35 سال سے ممبر نیشنل اسمبلی مستقل بن رہا ہے. علاقے کے اندر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ وہ اگر کسی کھمبے کو بھی اپنی طرف سے کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے کے ایم این اے بنا دیں گے، پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو. وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے آزاد اور ہر دفعہ ایم این اے بن جاتا ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا، عوام اتنا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. بنیادی وجہ کہ وہ اربوں پتی انسان ہے، یہ پورا شہر جو آباد ہوا یہ ان کی زمین ملکیت تھی، انہوں نے بیچی، لوگوں نے خریدی. اب پورے شہر کی زمین جس نے بیچی ہو تو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے. کہنے لگا کہ مگر ذاتی طور پر وہ بڑا بگڑا ہوا ہے، جوانی میں اس کے والد نے اس کو یو کے تعلیم کے لیے بھیج دیا اور وہاں جا کے وہ بالکل ویسٹرنائزڈ ہو گیا، اور جب وہ یہاں واپس آیا تو وہاں کے ماحول کو وہ یہاں خود لے کے آیا. دین سے اس کو کوئی مس نہیں، گھر میں اس نے پینے پلانے کا سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اس کے پاس دن رات کے مہمان اب بھی آتے رہتے ہیں. اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کیونکہ مالدار ہے، لوگوں کے کام کرواتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس کی ذاتی زندگی کا وہ جانے، हमारे बेटे की नौकरी लगवा दी, हमारी मुसीबत दूर कर दी, हमारा केस खत्म करवा दिया। चूंकि वो पब्लिक के काम करवाता है तो पब्लिक वोट उसी को देती है। मेरा जी चाहता है कि वो लिखा पढ़ा है, इस वक्त उसकी उम्र कोई 65 साल के करीब हो चुकी, तो अगर आप उसके साथ मुलाकात कर लें तो हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। इस आदिल ने कहा कि अभी तो फुर्सत नहीं, वापस जाना है। इतना है कि जब जाओ तो उसको इस आजिज का सलाम पहुंचा देना। जब अगले साल फिर बुखारी शरीफ की तकरीर के लिए गए तो हाजी साहब बड़े खुश, हजरत मैंने पिछले साल आपके सलाम दिए थे। और एमएनए साहब थोड़ी देर सोचते रहे, फिर कहने लगे, यार आपके पीर साहब आए तो मेरी भी मुलाकात करवाना। तो हजरत आज तो आपकी मैंने जरूर मुलाकात करवानी है। इस आजिद ने कहा कि उनके पास जाएं और जाकर कहें कि अगर मैं आपको मिलने के लिए आऊं तो बेअसल फकीर अला बाबिल अमीर, बुरा फकीर वो होता है जो किसी अमीर के दरवाजे पे चल के जाए, और अगर आप मिलने के लिए आएंगे तो नेमल अमीर अला बाबिल फकीर, आप नेमल अमीर बनेंगे, फकीर के पास चल के आएंगे। अब आप बताएं कि क्या करना बेहतर है। जब हाजी साहब ने जाके उसको कहा, उसने कहा अच्छा मेरी पजारों निकालें, वो तो वहीं मदरसे में ही आ गया। मदरसे के तलबा ने देखा कि एमएनए साहब आ गए, वो बड़े हैरान कि इसका तो दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं नजर आता था, न जुम्मा में, न मस्जिद में, न ईद में, ये तो बंदा ही और तरह का था। खैर वो मदरसा में आया, इस आजिज के पास कमरे में बैठा। इस आजिज ने उसके सामने थोड़ी देर तौबा इस्तगफार के उन्वान पर बात की। सुनता रहा, फिर कहते हैं हजरत तौबा तो वो करे जिसकी कुछ नेकियां हों और कुछ गुनाह हों, और जिसके पास हो ही गुनाह, नेकी हो ही नहीं, वो क्या करे। इस आजिज ने समझाया कि नहीं, आपके पास भी नेकियां हैं गुनाह भी हैं। कहने लगा मैं तो कोई नेकी का काम नहीं करता। मैंने कहा देखो, नेकी सिर्फ मुसल्ले के साथ वाबस्ता नहीं होती, नेकी का फैलाव बहुत ज्यादा है। आपके पास बेवाएं आती हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। कहने लगा जी हाँ करता हूं। यतीम बच्चियों की शादियां करवाते हैं, जी मैं करता हूं। दुख और मुसीबत जदों की मुसीबत दूर करने में उनकी हेल्प करते हैं, जी मैं करता हूं, ये काम तो मैं बहुत करता हूं। मैंने कहा ये सब नेकी के काम हैं, अल्लाह ताला ने आपको नेकी के काम की भी तौफीक दी है, बस मुसल्ले के साथ आपको लगाव नहीं, आपकी जिंदगी की तरतीब जरा इस वक्त तक काफिरों वाली है जो काफिर मुल्कों में है, मगर चूंकि आप कलमे पर अभी कायम हैं इसलिए ईमान सलामत है। आप खुदा को मानते हैं, पैगंबर इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, मलाइका को मानते हैं। कहने लगा जी हाँ मेरा ईमान तो पक्का है। मैंने कहा बाकी फिर सब गलतियां माफ होने के काबिल। कहने लगा जी अच्छा फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं। इस आजिज ने उसको यही बैठ के कलिमात पढ़ाए और उसके कल्ब पर उंगली रखकर अल्लाह अल्लाह की जरब लगाई और उसको कहा कि बस आप ये जिक्र मुराकबा करना शुरू कर दें। याजिद वापस आ गया। अब हुआ क्या कि ये वापस घर गए तो एक रात में अल्लाह ताला ने इनके दिल की हालत को बदल दिया। अगले दिन ये उठे और अपनी बीवी को कहने लगे कि घर में जितनी शराब की बोतलें पड़ी हैं सब तोड़ दो और शराब गटर के अंदर बहा दो। बीवी हैरान कि ये कैसा नसीब वाला दिन चढ़ा कि मेरा मियां आज शराब से तौबा कर रहा है। फिर उसने अपनी बीवी को कहा कि ये जितनी मॉडल गर्ल्स किस्म की लड़कियां आती हैं इनको कहो कि आज के बाद मेरे घर के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। वो बीवी सोचने लगी कि मैं तो दुनिया में आ गई, मेरे सामने सब कुछ होता था, मैं बोल नहीं सकती थी, आज मेरा मियां हर एक से तौबा कर रहा है। चुनाचे उसने वो जो 8-10 मॉडल किस्म की थी, उनमें से हर एक को 10-10 लाख रुपए देकर उनको कहा कि जाओ अपना घर खरीदो, अपना घर बसाओ, आज के बाद इस घर में तुमने नहीं आना। उनसे भी उसने जान छुड़वा ली। अब तीसरे दिन बीवी के साथ बैठा टीवी पे खबरें देख रहा था, तो टीवी पे खबर लगी कि हज परवाजें शुरू हो चुकी हैं और हाजी लोग जा रहे हैं। अपनी बीवी से कहता है, मेरी जिंदगी के 65 साल गुजर गए, मैं दर्जनों मरतबा यूरोप अमेरिका का चक्कर लगा के आया, मगर आज तक मुझे मक्का मदीना देखने की तौफीक नहीं हुई। मेरा दिल करता है मैं भी हज करूं। बीवी ने कहा कि आप तो अभी जा सकते हैं, इसमें क्या रुकावट है? वहीं बैठे इसने मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को फोन किया कि मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा, जनाब आप 35 साल से MNA हैं, आप अभी आए तो हम आपको एज ए स्पेशल केस अभी भेज देंगे। चुनाचे इसने अपना सामान बनाया और नेक्स्ट डे अपने शहर से इस्लामाबाद पहुंचा। उन्होंने हाजियों के एक ग्रुप का इसे अमीर भी बना दिया और इसको रवाना कर दिया। अल्लाह ताला की शान देखिए, हज के सफर में अल्लाह ने इसकी जिंदगी बदल दी। लोग कहते थे कि इसने वहां हाजियों की इतनी खिदमत की कि पता ही नहीं चलता था ये कोई नवाब है या किसी का जर खरीद गुलाम है। ऐसे मिट के खिदमत की उसने, खाने ला रहा है, हालांकि ये हार्ट पेशेंट भी था। बहरहाल जब ये मदीना तैयबा जाने लगा तो इसके दिल में ये बात आई कि मैं अल्लाह के महबूब के दर पे हाजिर हो रहा हूं, मैं अपनी शक्ल तो बना लूं पहुंचने वाली। चुनाचे इसने चेहरे के ऊपर दाढ़ी वाली सुन्नत सजाने की नियत कर ली। अब ये हज के बाद वापस आया, लोग हैरान, सर पे टोपी, चेहरे पे रीश सजी है, 5 वक्त का नमाजी बन गया। अब शहर के उलमा को पता चला तो सब उलमा ने मिलकर मशवरा किया कि पहले तो हमारी सिर्फ बनती नहीं थी, अब ये नेक बन गया, अब हमारा हक बनता है कि हम चल के जाएं और इनको जाकर मुबारकबाद दें। चुनाचे शहर के 30-35 उलमा इनकी मुलाकात के लिए गए। ये असर की नमाज पढ़ के फारे हुए, इतने में बाहर बेल हुई, नौकर से कहा कि देखो कौन है। उसने कहा, जी उलमा मिलने के लिए आए हैं। चुनाचे अपने ड्राइंग रूम में आया, सब उलमा से गले मिला और मिल के कहते, जी आप बैठें, मैं आपके लिए जमजम खजूरें लाता हूं, फिर मैं आपको हज की कारगुजारी सुनाऊंगा। उलमा बैठ गए, घर आया, बीवी को कहा कि इतने उलमा हैं, उनके लिए जमजम खजूरें दे दो। उसने कहा, बहुत अच्छा। चुनाचे वो छोटे छोटे कप्पों में जमजम डालने लगी। इनके हाथ में तस्बी, सर पे टोपी, ये अपने बेड के ऊपर बैठकर तस्बी पढ़ने लगे। अल्लाह ताला की शान, इसी दौरान हार्ट अटैक हुआ। जब बीवी जमजम लेकर आई तो ये अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। पहली जिंदगी देखें क्या थी और ये देखें कि अल्लाह ने बैत की बरकत से मौत कैसी अता की। हज करके आए हैं, माफियां मांग के आए हैं, चेहरे पे सुन्नत सजाई, सर पे टोपी है, बावजू है, असर की नमाज पढ़ी, हाथ में तस्बीह है और इस हालत में इनको मौत आ जाती है। हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह का वाकया एक किताबों में लिखा है कि एक औरत ने उनसे बैत की और उसके बाद उस औरत का उनसे कोई राबता भी न रहा। 20 साल गुजर गए और 20 साल गुजरने के बाद जब उस औरत की वफात का वक्त आया तो वो औरत कहती थी कि वो देखो मौलाना बैठे हैं और मुझे कलमा पढ़ा रहे हैं, वो देखो मौलाना बैठे हैं कलमा पढ़ा रहे हैं। 2 मरतबा उसने कहा, ऊंची आवाज से कलमा पढ़ा, अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये बैत की निस्बत की एक बरकत होती है जो बंदे के ईमान की हिफाजत का सबब बन जाती है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका जवान बेटा अमेरिका में 18 साल 17 साल की जो उम्र को पहुंचा तो वहां के क्लबों में वो फंस गया। वालिद इतना परेशान, वालदा इतनी परेशान कि कोई हद नहीं। अब उन्होंने साजिद के सामने रोना रोया। साजिद ने कहा भाई जैसा कैसा है बस उसको बैत करवा दो और फिर बरकत देखो निस्बत की के क्या होती है। अल्लाह ताला की शान कि उस बच्चे ने वालदेन की बात मानकर बैत कर ली और ये ना समझा कि मेरे साथ होने वाला क्या है। अब मशायख की दुआओं में उसका हिस्सा पड़ गया। अल्लाह ताला ने उसके दिल की दुनिया को बदलना शुरू किया। एक साल के अंदर वो बच्चा जो अपनी जुबान से कहते हैं कि न्यूयॉर्क में मेरे पीछे एक वक्त में 10-10 लड़कियां होती थीं जो मुझे गुनाह की तरफ माइल करती थीं, मैं एक का फोन बंद करता था और दूसरी का अटेंड करता था, दूसरी का बंद करके तीसरी का अटेंड करता था और 10 की 10 को पता था कि इसका 10 से ताल्लुक है, मगर सब कंपीट कर रही थी कि इसको कौन अपना ले। उस गुनाह भरी जिंदगी से अल्लाह ताला ने उस बच्चे को तौबा की तौफीक दी। इस वक्त एक दारुलूम में राबिया के अंदर वो पढ़कर आलिम बन रहा है। ऐसी जिंदगियां अल्लाह बदलते हैं। हालांकि 18 साल की उम्र में ऐसी गंदी आदतों में और लड़कियों के माहौल में और वो भी अंग्रेज लड़कियां, इंसान का निकल आना ये तो अल्लाह ताला की कोई खास रहमत होती है। तो ये बड़ों हमारे मशायख की दुआएं हैं इन लोगों के लिए। हमारे सिलसिले में ऊपर जो लोग गुजरे वो अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे थे और उन्होंने क्यामत तक आने वाले सिलसिले में दाखिल होने वाले सब लोगों के लिए दुआएं की हुई हैं। अल्लाह उनकी बरकत से ईमान की हिफाजत फरमा लेते। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है। रियूनियन में तशरीफ ले जाते थे, वहां के एक आलिम बैत थे और उनके सब बेटे और बेटियां आलिम हाफिज कारी, आलिमात हाफिजात कारियात थी। ई खाना हम आफ्ताबस, उस घर का हर हर फर्द सूरज चांद की तरह चमकता था। लेकिन एक उनका बेटा जिसने फ्रांसीसी जुबान पढ़ी और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया, वो लड़का ऐसे माहौल में फंसा कि सिरे से दहरिया बन गया। अब घराना उलमा का और एक बेटा उनमें से दहरिया, बेअमल बेनमाज नहीं, वो सिरे से अल्लाह ताला के वजूद का मुनकर था। वो आलिम ये वाकया खुद सुनाने के बाद कहने लगे कि हम मियाँ बीवी रातों को रोते रोते रह जाते कि ये हमारे घर में से एक बच्चा कैसा निकल आया, किसी को बता भी ना सकते। मैं मस्जिद का पेश इमाम, लोगों में मेरी इतनी इज्जत कदर, मेरे बच्चे इतने नेक, मेरी बेटियां इतनी नेक, और उनमें से एक घर का फर्द वो दहरिया बन गया। कहने लगा हमारे हजरत भी आते तो हम शर्म के मारे उनको भी न बता सकते। ये बात ध्यान में रखिए कि जिस तरह मरीज को चाहिए कि हर बीमारी अपने डॉक्टर को बताए तब इलाज होगा, इसी तरह मरीज को भी चाहिए कि अपनी रूहानी हर बीमारी की इतला शेख को जरूर दे ताकि उसका इलाज हो सके। अगर मरीज शर्म करे कि मैं डॉक्टर को बीमारी कैसे बताऊं तो उसकी बीमारी का इलाज नहीं होगा, इसी तरह मुरीद शर्म करे कि मैं अपना ये गुनाह कैसे बताऊं तो उसका इलाज नहीं होगा। हमारे मशायख ने कहा कि मुरीद को चाहिए कि शेख के सामने दिल का हाल इस तरह खोले जैसे कोई लड़की अपनी माँ के सामने अपना सब कुछ खोल देती है। तो खैर एक दिन उन्होंने हजरत के सामने अपने दिल का गम कह डाला। हजरत ने फरमाया कि अपने बेटे को बैत करवा दो। उनका हजरत वो तो ना दीन को मानते हैं ना खुदा को मानते हैं, वो बैत कहाँ होगा। हजरत ने कहा आप वाले दो उसे समझा बुझा के बैत करवा दो। अब उसके वालिद ने बात की, लड़का कहने लगा न मैं खुदा को मानता हूं, न नबी को मानता हूं, न इस्लाम को मानता हूं, मेरा क्या वास्ता। वालिद साहब ने कहा बेटा हम सब बैत हैं, तुम भी बैत कर लो। जब ज्यादा पुश किया तो वो कहने लगा कि अच्छा आप लोगों की मजबूरी से मैं बैत तो कर लेता हूं, मगर मैंने करना कराना कुछ नहीं। उन्होंने हजरत साहब से पूछा, हजरत साहब ने फरमाया कि मैंने तो करने के लिए कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा कि ये करना वो करना। कुछ ना करे, फकत बैत के कलिमात पढ़े और फिर इसकी बरकत आप देखिए। चुनाचे माँ बाप ने फिर अगले दिन समझाया, हत्ता कि उस बच्चे ने हजरत के हाथों में हाथ देकर तौबा के कलिमात पढ़ लिए। वो न समझ सका कि किसी अल्लाह वाले के पढ़ाने पर जो ये कलिमात पढ़े जाते हैं, इस तौबा को एक निस्बत होती है बुजुर्गों के साथ। अब क्या हुआ कि वो घर में तो पहले भी होता था लेकिन हजरत से मिलता ही नहीं था। अब बैत की बरकत के बाद उसके दिल में हजरत की अकीदत मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो गई। चुनाचे कभी वो घर से खाना ला के हजरत के सामने दस्तरखान बिछा देता, कभी पानी ला के दे देता, कभी दरवाजा खोल देता, कभी महफिल में बैठ के दो बातें सुन लेता। अल्लाह ताला की शान देखिए, एक साल के अंदर अल्लाह ताला ने उसके दिल की दुनिया को ऐसे बदला, उसने बाकायदा इस्लाम कबूल किया, नमाजें शुरू की, चेहरे पे सुन्नत सजाई, अपनी वजाकता मुसलमानों वाली बनाई, तहज्जुद गुजार बन गया। और अगले दो सालों में उसने जिक्र पर इतनी मेहनत की कि दो सालों के बाद हमारे हजरत ने उसको इजाजत खिलाफत अता फरमाई। वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, फिर उसने दीन का काम किया। इस वक्त हजारों तलबा नौजवानों के लिए वो शेख और मुर्शिद बनके काम कर रहा है। ये निस्बत की बरकत होती है कि दहरियों से भी अल्लाह ताला फिर दीन का काम ले लिया करते हैं, अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। चुनाचे हमारे एक दोस्त हाफिज साहब थे, ऐसी ईमान की हिफाजत, उन्होंने असर की नमाज पढ़ी और अपने भाई को कहते हैं इस आजिज का नाम लेकर कि हजरत साहब को मेरे सलाम दे देना और तुम गवाह रहना मैं कलमा पढ़ रहा हूं। और ये कह के उस हाफिज साहब ने कलमा पढ़ा और मस्जिद में वहीं उनकी वफात हो गई। ऐसी मौत अल्लाह देते हैं ईमान वाली, यूं अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। हमारे एक दादा पीर ख्वाजा फजल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो फरमाते थे कि जिस बंदे ने इस आजिज से बैठ के कलमात पढ़े और इस आजिज ने उनके कल्ब पर उंगली रखकर अल्लाह अल्लाह कही, उसको जिक्र के बगैर मौत नहीं आ सकती। ऐसी मकबूल दुआएं हमारे मशायख की, इस तौबा की बरकत से अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमा लेते हैं। चुनाचे एक वाकया आखिरी सुनाकर बात मुकम्मल करूंगा। हमारे अपने मोहल्ला में इस आजिज के क्लास फेलो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज को जितनी मोहब्बत दुनिया में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने मुल्क में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने मुल्क में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने शहर में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने शहर में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने मोहल्ले में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने मोहल्ले में मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत अपने घर में मिलती है। लोग कहते हैं कि घर का पीर हल्का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज पर अल्लाह का ऐसा फजल, अल्लाह ने घर में भी इस आजिज को पीर बना दिया। इस आजिज की अहलिया अहलिया बीवी भी है और मुरीदा भी है। जब वो देखती हैं कि मोहल्ले की वो लड़कियां जिनके साथ ये आजिज प्राइमरी में पढ़ता था या जिनके साथ बचपन में गलियों में खेलता था वो आती हैं और बैत होती हैं, तो इस आजिज की अहलिया बड़ी हैरान होती हैं। कहती हैं कि बचपन की लड़कियां तो आदमी की हकीकत को जानती हैं कि उस वक्त बंदा छोटा होता है और तरह की जिंदगी होती है, مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جن گھروں میں کھیل کھیل کر یہ عاجز جوان ہوا، آج ان کی بچیاں، ان کی اولادیں سب کی سب الحمدللہ اس عاجز سے بیت ہیں. اللہ رب العزت نے ایسی پاکیزہ جوانی عطا فرمائی کہ اپنے محلے کی گلی کی بہو بیٹیاں، بچیاں، دادیاں، نانیاں سب کی سب اس عاجز سے بیت کا تعلق رکھتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اس عاجز کے ایک کلاس فیلو تھے، وہ بھی اس عاجز سے بیت، اور ان کے والد صاحب بھی اس عاجز سے بیت. حالانکہ ان کے والد تو میرے والد کی عمر کے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں ان کے ڈال دی، لہذا انہوں نے اس عاجز سے بیت کر لی. اب وہ جو میرے دوست ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضو ہو کر سارے نمازیوں کو سنایا. یہ واقعہ ہم نے بھی سنا، تو ہم نے ان کو بلا کر خود بھی یہ واقعہ براہ راست سنا. وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے. توجہ سے بات سنیے گا، میرے والد صاحب بیمار تھے حتیٰ کہ ان کے آخری لمحات شروع ہو گئے. ہم چار پانچ بھائی، دو تین بہنیں، سب ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے، رونے لگے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. عجیب کیفیت تھی، اور والد صاحب آخری سانس لے رہے تھے. کہنے لگے کہ میں والد صاحب کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں میری ایک بہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں تو بالکل ٹھنڈے بے جان ہو چکے. تھوڑی دیر بعد اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو، ابو کے گھٹنے بھی ڈھلک گئے، ٹانگیں ڈھلک گئیں. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح گویا پاؤں کی طرف سے سمٹ کر گھٹنے تک آ گئی. سانس اکھڑا نہیں تھا، تیز ہو گیا تھا، اور لگتا تھا کہ بس چند منٹ کی بات ہے. کہنے لگے کہ ایسے میں میں نے والد صاحب کے چہرے کو متواتر دیکھ رہا تھا. والد صاحب کے ہونٹ بند، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور والد صاحب نے ایک مرتبہ بھی ہونٹ نہیں ہلائے کہ میں سوچتا کہ والد صاحب نے بھی کلمہ پڑھا. میرے دل میں یہ بات آئی، اے اللہ، کیا میرے والد صاحب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائیں گے؟ اس خیال کے آتے ہی میں اتنا رویا، اتنا رویا کہ کوئی حد نہیں. کہنے لگے اللہ نے میری مدد کی. میرے دل میں ایک خیال آ گیا، میں نے اپنے دل کے اندر دعا کی، اے اللہ، میرے والد صاحب کی بیعت کے تعلق فلاں سے ہے، اس عاجز کے بارے میں سوچا، اور ان کا بیعت کا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. اے اللہ، اگر ان مشائخ کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، ان کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے. کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی، تلمح البصر، پلک چھپکنے کی دیر تھی، میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے، پانچ مرتبہ کلمہ پڑھا، پانچویں مرتبہ روح پرواز کر گئی. یہ چھوٹی سی بات نہیں، اللہ رب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں، اس نسبت کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بیعت ایک روحانی تعلق ہے جو مشائخ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. بالخصوص جوان بچے بچیوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں بندہ خود محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے آتوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. اب چند باتیں معمولات کے بارے میں کہ جو مستورات بیعت ہو چکی ہیں یا ابھی ہوں گی اس محفل میں، چونکہ آج رمضان شریف کی آخری محفل ہے، اس وقت بھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے. جو پہلے بیعت ہو چکی ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں گی، جو نئے سرے سے بیعت ہونا چاہیں گی وہ بیعت کی نیت کر لیں گی، اور جو دوسرے مشائخ سے عورتیں بیٹھ ہیں وہ فقط توبہ کی نیت کریں گی تاکہ محفل میں توبہ کی قبولیت میں وہ بھی شامل. تو پہلے بیعت کے کلمات پڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ پھر بعد میں کچھ معمولات کی تفصیل بھی عرض کی جا سکے. آج رمضان مبارک کے آخری دن کی اس بابرکت محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے. دل میں نیت اور ارادہ کر لیجئے کہ اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے. تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جو مرد بھی سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں, عورتیں بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن, خطبہ سن لیجئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اب ان کلمات کو پڑھ کے اب توبہ طائب ہو چکی ہیں. چند معمولات ہیں, ان کو توجہ سے کیجئے. اس عاجز نے جو کچھ کارگزاری کے چند واقعات سنائے تو شیطان کسی کے ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے. اس عاجز کو یہاں آتے ہوئے کئی سال گزر چکے. الحمدللہ مختلف محفلوں میں مردوں نے عورتوں نے اس عاجز سے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی, عادت ہی نہیں ہے ایسی باتیں کہنے کی. مگر اس دفعہ پہلے دن اعتکاف سے ہی دوستوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا कि बैत के बारे में कुछ तफसील बताएं, इसके फवायद बताएं, और पहले दिन से लेके आज 10वां दिन है, इस आजिज ने खामोशी अख्तियार की। आज दिल में ये बात आई कि अगर किसी को इस बात के खुलने से फायदा हो जाए तो ये आजिज क्यों रुकावट बने। इस वजह से ये चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर दी। इसमें आजिज का कोई कमाल नहीं, ये मेरे शेख का कमाल है। उनकी निस्बत सच्ची पक्की थी। इस आजिज की हैसियत तो डाकिये की तरह है, तोहफा भेजने वाला तोहफा भेजता है, डाकिये का काम तो तोहफा पहुंचा देना होता है। तो हमारे मशायख की मेहनत है, हमारे मशायख की अल्लाह के यहाँ कबूलियत है। इस आजिज को आप एक डाकिये की तरह समझें कि ये उनकी उस नेमत को आप तक पहुंचाने के लिए डाकिया बन के हाजिर हो गया है। हाँ, देखा यह गया है कि दावत तो होती है बड़ों की, लेकिन जब वो खा के दस्तरखान से उठ जाते हैं तो जो घर के खादिम नौकर होते हैं उनको भी वही बिरयानी खाने को मिलती है जो बड़ों ने खाई होती है। तो इस आजिज की हैसियत भी सिलसिला के एक नौकर और खादिम की सी है। ये रूहानियत की बिरयानी हमारे बड़ों ने पकाई और खूब खाई। अब वो चूंकि दुनिया से चले गए, इसलिए अब दस्तरखान से बचा हुआ हम खाते फिर रहे हैं, वरना अपनी मेहनत तो सिफर है। अल्लाह ताला हमारे अयूब पे पर्दे ही डाले और हमें क्यामत के दिन अपने मशायख के सामने रुसवा होने से महफूज फरमाए और हमें इस निस्बत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। तो ये चंद बातें इसलिए कहीं कि दोस्तों का इसरार था और मजमून को खोलना भी जरूरी था, तो इसलिए ये चंद बातें कह दी, वरना अपना दिल इन बातों को करने को हरगिज आमादा नहीं था। अल्लाह जानता है कि अल्लाह के लिए कही है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। मामूलात के बारे में जरा सुन लीजिए। सबसे पहले मुराकबा। मुराकबे का मतलब क्या है कि थोड़ी देर सारी दुनिया के ख्यालात से हट कट जाना और अल्लाह ताला की याद में डूब जाना। तो इंसान बावजू हो, किबला रू हो, अत्तयात की शक्ल में बैठे या आलती पालती मार के बैठे, चार जानू बैठे। औरतों को चाहिए कि जब नमाज से फारिग हों तो अपने दुपट्टे को ऐसे कर लें कि जैसे घूंघट होता है और आंखों को बंद कर लें। दुपट्टे को चेहरे पे करते हुए यूं समझें कि आज मैं अपने कपड़े पे ये चेहरे पे ये कपड़ा डाल रही हूं, एक वक्त आएगा कि मुझे कफन पहना दिया जाएगा। आज मैं अपनी मर्जी से आंखें बंद कर रही हूं, एक वक्त आएगा ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। सारी दुनिया से अपने आप को आप अलहदा कर लें और ये सोचें कि न जमीन, न आसमान, न इंसान, न हैवान, न शैतान, कुछ भी नहीं है। फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है और उसकी तरफ से एक नूर आ रहा है जो मेरे दिल में समा रहा है और मेरा दिल की जुल्मत स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है और मैं उसे सुन रही हूं। यानी आपने जबान से अल्लाह नहीं पढ़ना, जबान तालू से लगी हुई हो, मुंह बंद हो, जिस्म को हरकत भी नहीं देनी, हिलना भी नहीं, सांस से भी कुछ नहीं करना। जैसे आपके पास टेप हो और उस पे कारी सुदैस साहब की तिलावत हो रही हो तो आप गौर से बैठ के सुनती हैं। न सांस को कुछ होता है, न जिस्म को कुछ हरकत होती है, जरा तवज्जो दे रही होती है। तो आपने अपनी तवज्जो दिल के अल्लाह अल्लाह सुनने पर लगानी है, करने पर नहीं लगानी। जब आप महसूस करेंगी ना कि आप सांस बंद कर लेती हैं, इसका मतलब है आप अल्लाह अल्लाह सुन नहीं रही, कर रही हैं। जब आपका जिस्म हरकत करने लग जाए तो इसका मतलब आप अल्लाह अल्लाह सुन नहीं रही, अल्लाह अल्लाह करने में लग गई हैं। तो करना नहीं है, ये एक नुक्ता समझ लीजिए कि जैसे टेप सुनती हैं गौर से बैठ के, नाक सुनती हैं गौर से बैठ के, या जैसे अब आप बयान सुन रही हैं गौर से बैठ के, न जिस्म हिल रहा है, न सांस को कुछ हो रहा है, न कोई तंगी फील हो रही है, इसी तरह आपने अपने दिल की अल्लाह अल्लाह सुननी है। जिंदगी है अमरे अल्लाह, जिंदगी एक राज है, कल्ब कहे अल्लाह अल्लाह, जिंदगी का साज है। चंद दिन आप मुराकबे में बैठेंगी, ये जिंदगी का साज छिड़ेगा तो फिर हर वक्त आपको अल्लाह अल्लाह की कैफियत महसूस होगी। یہ عجیب نغمہ ہے جو انسان کے اندر سے اس کو آواز آتی ہے، اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں. حدیث پاک میں اس کے لیے ذکر خفی، ذکر سری، ذکر خامل، یہ سارے نام اسی قلبی ذکر کے لیے آئے ہیں. تو آپ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اور اگر 2-4 منٹ ہی مراقبہ کریں گی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. تو کچھ وقت لگانے کی کوشش کریں. جب بچے سو جائیں، آپ فارغ ہوں، وقت نکال سکتی ہوں، چاہے تہجد کے بعد، چاہے عشاء کے بعد، جس وقت سکون محسوس کریں اس وقت آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں. اگر عمر زیادہ ہے اور آپ مصلے پہ نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر، صوفے پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کر سکتی ہیں. اگر بیٹھنے میں بھی دقت ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تو آپ اوٹ لگا کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ بستر پہ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ میرے بندے جو لیٹے بیٹھے کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، مگر بیٹھ کے کریں گی تو اجر زیادہ ہے، مجبوری کی وجہ سے اوٹ لگا کے کریں گی تو کوئی بات نہیں. اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عورتیں آنکھیں بند کرتی ہیں نا، ان کو الٹے سیدھے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر ڈر کے مارے آنکھ کھول لیتی ہیں کہ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی وجہ یہ ہے کہ اب تک دل میں جو کچھ گند بھرا گیا، آنکھ بند کرتے ہی وہ گند سامنے آئے گا، اسی گند کو تو صاف کرنے. اگر آپ یہ مراقبہ کرنا چھوڑ دیں گی تو یہ گند تو صاف نہیں ہوگا، پھر گند تو اسی طرح قبر میں ساتھ جائے گا. یہ تو رونے والی بات ہے، بلکہ خطرے کی بات ہے کہ جلدی سے جلدی دل کو صاف کر لو، ورنہ جو گند مجھے آنکھ بند کر کے اب محسوس ہوتا ہے، اگر اللہ نے قیامت کے دن اس گند کو کھول دیا پھر میرا کیا بنے گا. تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ خیالات گندے آتے ہیں، شیطانی شہوانی نفسانی آتے ہیں، قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو کچھ اب تک دل میں ہم نے جمع کیا وہی کچھ ہے، دل کو ٹریش کین بنایا ہوا تھا اس لیے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے. اب جیسے ہی ہم آنکھ بند کر کے دل میں جھانکتے ہیں ہمیں بو لگتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کمرے کے اندر فرض کرو چوہا مر گیا اور بو آ رہی ہے بہت ساری، اور کوئی عورت ذرا دروازہ کھولے اور بو آئے اور یہ دروازہ بند کر دے اور کہے جی میں تو دروازہ کھولتی نہیں، مجھے تو بہت بو آتی ہے، تو یہ بو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہی کہ آپ اس بو کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، دروازہ کھولیں اور اس چوہے کو اٹھوا کر باہر ڈلوا دیں اور جگہ صاف کروا کے روم فریشنر چھڑک دیں تو کمرے سے بو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے دلوں میں شیطان چوہے نے بھی گند ڈالا ہوا ہے. اب ہم جیسے ہی دل کا دروازہ کھولتے ہیں ہمیں وہ گند محسوس ہوتا ہے، تو ڈریں گھبرائیں نہیں، بیٹھی رہیں. بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بالآخر اس گند کو دور کر دیں گے اور خود بخود اپنے ذکر کی خوشبو عطا فرما دیں گے. جس نے بھی ذکر مراقبہ شروع کیا، ابتدا میں سب کی حالت اسی طرح ہوئی اور اسی سے پھر لوگ بالآخر بڑے بڑے ولی بن کر تیار ہوئے. تو خیالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر گندا خیال آئے تو جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، پھر جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ. شروع میں آپ کو 100 خیال گندے آئیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد 99، پھر 98، پھر 97، اور اس طرح ایک وقت آئے گا کہ گندے خیال ختم ہو جائیں گے اور آپ آنکھ بند کرتے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ایسا مزہ آئے گا کہ انسان کا جی چاہے گا کہ بس میں اللہ کی یاد میں ڈوبا رہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب آپ گردن جھکائیں گی آپ کو پھر دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। जिनका इश्क सच्चा होता है उनके लबान पे खामोशी होती है, वो दिलों में अपने महबूब को याद कर रहे होते हैं। तो ये मुराकबा इसी की अमली तस्वीर है। तो एक तो ख्यालात से घबराने की जरूरत नहीं, और दूसरा कई मरतबा औरतें ये शिकायत करती हैं कि जब मुराकबे में बैठती हैं हमें नींद आ जाती है, इससे भी घबराने की कोई बात नहीं। देखें, एक सखी के दरवाजे पर कोई फकीर आकर बैठा 5 घंटे से, और इस दौरान उसको ऊंघ भी आ गई 1 घंटा, तो कोई यही नहीं कहेगा जी ये 4 घंटे से बैठा है। हर बंदा कहेगा जी 5 घंटे से यहां बैठा हुआ है, हालांकि उस दौरान उसको नींद भी आ गई। तो जब आपने मुराकबे की शक्ल बना ली तो आपने मालिकुल मुल्क के दरवाजे पर अपनी हाजिरी लगवा दी। अब दरमियान में नींद भी आ गई तो ये कहेंगे कि दरवाजे के ऊपर तो ये बैठी हुई थी। तो घबराने की बात नहीं है। असल में इब्तदा में औरतें सकीना और नींद के दरमियान फर्क नहीं कर सकती, उनको नहीं पता चलता। नुआस एक ऊंग सी महसूस होती है, मगर वो तो अल्लाह की तरफ से रहमत के बरसने का मौका होता है। तो आम औरतें उसको नींद समझ लेती हैं। उन बारीकियों में जाने की बजाय मोटी सी बात है कि नींद आए तो परवाह ना करें, नींद की हालत में भी इंसान का दिल जिक्र करता रहता है। तो जब इन दो बातों की आपको परवाह नहीं, तो अब आप आधा घंटा मुराकबा सुबह शाम करें, 1 घंटा करें, 2 घंटे करें, ऐसी भी अल्लाह की नेक बंदियां हैं, वो रोजाना मुख्तलिफ औकात में 3-3 घंटे रोजाना मुराकबा करती हैं। और 2 घंटे मुराकबा सुबह शाम, ये तो बहुत ख्वातीन है, और 1 घंटे की तो तादाद गिननी भी मुश्किल है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। तो आप अगर मुराकबे में बैठेंगी तो दिल काबू में आएगा, लेकिन जब आपका दिल जारी हो गया तो ऐसी लज्जत आपको मिलेगी कि आप नमाज में खड़ी होंगी और आप तो मकाम एहसान वाली नमाज पढ़ेंगी तो मजा आ जाएगा। अपनी जुबान से आप कहेंगी कि हजरत मुझे तो यूं लगता है मैं दुनिया में पैदा ही अब हुई हूं, अब से पहले मैंने सारा वक्त जाया कर दिया। तो इसलिए इस मुराकबे को करने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा अजीब जिक्र है, बेरियाज़ जिक्र है। आप औरतों की महफिल में बैठ के अपने कल्बी जिक्र कर रही होंगी, किसी को पता ही नहीं कि आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसलिए नौजवान बच्चियां खूब मुराकबा करें ताकि उनके दिल अल्लाह ताला की याद से लबरेज हो जाएं, अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाए। वकूफ़ कल्बी का मतलब होता है कि चलते फिरते लेटे बैठे अपना ध्यान अल्लाह की तरफ रखना। इसमें अल्लाह अल्लाह करना जरूरी नहीं होता, बस बुरा ख्याल दिल में ना हो, ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रहे। दुरूद शरीफ पढ़ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, ये तो पहले भी कई मरतबा समझा चुके। आखिरी चीज है राबते शेख। राबते शेख का क्या मतलब कि जो अपने बातनी हालात व कैफियात हों वक्तन फक्तन फोन के जरिए या ईमेल के जरिए या खत के जरिए अपने शेख को पहुंचाना और फिर उनकी हिदायत के मुताबिक जिक्र करती रहना। आज तो इतना कम्युनिकेशन का दौर है कि लोगों ने दुनिया को ग्लोबल विलेज कहना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपने हालात कैफियात पहुंचाती रहें, ये आजिज आपके लिए दुआएं करता रहेगा। कई मरतबा आपकी तरफ से तो खतूत आएंगे, ये आजिज दुआ का जवाब फौरन दे देगा, मगर जरूरी नहीं कि उसके खत का भी जवाब पहुंचे। हाँ, जहां बहुत जरूरी होता है ये आजिज वक्त निकाल के और कामों को रोक के खत का जवाब भी दे देता है, लेकिन वो वाकई बहुत अहम होता है। रूटीन की बातें ऐसी होती हैं कि उनको दुआओं की जरूरत होती है, तवज्जोहात की जरूरत होती है, तो गायबाना तवज्जो भी कर देते हैं, दुआ भी कर देते हैं। उनको कल्बी जवाब मिल जाता है तो वो मसरूफियत का ख्याल रखते हुए इसी को कबूल फरमा लें। अगर ये आजिज जो डाक रोज मिल रही है ना, उसको अगर रोजाना पढ़ना शुरू करे तो अंदाजन मुझे 1 घंटा कम अज कम पढ़ने के लिए चाहिए, इतनी ईमेल आती हैं। और अगर उनका जवाब लिखने बैठूं तो कम अज कम 3 से 4 घंटे उनके जवाब के लिए चाहिए, तो फिर 5 घंटे रोजाना इस काम के लिए कहां से निकालें? सफर भी करने होते हैं, प्रोग्राम भी करने होते हैं, और जहां जाते हैं लोगों को पता है कि 10 मिनट तो जिंदगी के फारिग नहीं हो पाते, तो ये घंटे कहां से निकालें? अमरे मजबूरी, इसलिए फिर ये कहते हैं कि भाई दुआएं दे दी जाती हैं, इसी पे आप खुश हो जाया करें कि हमारी हालात हमारे शेख को पहुंच गए और उनके इल्म में आ गए, वो दुआएं कर रहे हैं। रूहानी ताल्लुक होता है आप लोगों से, मगर खत का जवाब पढ़ने के लिए, अब आम तौर पर मस्तूरात के खतूत में ऐसी बातें होती हैं कि किसी और से जवाब लिखवा भी नहीं सकते। मर्दों के खत हों तो चलो किसी आलिम से कह दिया, खुलफा में से किसी कह दिया कि जी आप इसका जवाब लिख दें, मगर औरतों की बातें ऐसी होती हैं कि अमानत होती हैं, तो किसी दूसरे के जरिए से लिखवा भी नहीं सकते, तो ये भी मजबूरी है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपनी तरफ से हालात पहुंचाती रहें और दिल में मुतमैन रहें कि अगर जरूरी होगा तो हमें जवाब भी पहुंच जाएगा। वैसे साजिद की आदत है कि जो बच्चियां बाकायदा खत लिखती हैं, बताती हैं, उनको खत का जवाब न भी दे, जब कभी अल्लाह ताला फोन पे बात करवा देते हैं या मुलाकात करवा देते हैं तो ये आजिज उनकी कैफियत के बारे में उनको पूरा समझा देता है। इसको राबता शेख कहते हैं। तो इन 6 बातों का आप ख्याल करेंगी तो अल्लाह ताला दिल की दुनिया को बदलेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें ताकि उसके बाद दुआ कर सकें। आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हटकट के अल्लाह ताला की याद में डूब जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कीजिए और आज की इस महफिल को, इस रमजान मुबारक की आखिरी महफिल समझते हुए, अपनी तौबा की कबूलियत का आखिरी चांद समझते हुए अल्लाह ताला से खूब दुआ मांग लीजिए। परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और ये बख्शिश का अशरा है, मगफिरत का अशरा है, इत्कुम मिनन्नार का आखिरी दिन है। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा दे। सुभान रब्बिल आला वहाब, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आल सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मालिक, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, अब तक जो बयानात हुए उनके कहने में कोई कोताही हुई माफ़ फरमा, सुनने वालों से अदब में कोताही हुई उसको भी माफ़ फरमा। ए मालिक हमारी इसलाह फरमा। अल्लाह हम गंदे हैं, हमें सही मानों में बंदा बना, बिगड़े हुए हैं हमारी इसलाह फरमा, बिखरे हुए हैं हमें जमैयत नसीब फरमा। ए अल्लाह आपकी तलब में हम यहाँ आकर बैठते हैं, अल्लाह हमें अपना ताल्लुक नसीब फरमा। अल्लाह ये इतकाफ में बैठने वाले मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से यहाँ एक जगह जमा है, अल्लाह आपकी मोहब्बत में जमा हुए हैं, आपकी मुहतलाश में यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह रहमत फरमा दीजिए, इनका आना कबूल कर लीजिए, इनके फैले हुए दामन अल्लाह भर दीजिए। अल्लाह ये मस्तूरात इतनी दूर दूर से आई हैं, अल्लाह आपके सामने दामन फैलाए बैठी हैं, माफ़ी की तलबगार हैं, अल्लाह इनको माफ़ी अता फरमा दीजिए, इनकी तौबा कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इनके दिलों को नेकी से भर दीजिए, अपनी मोहब्बत से दिलों को लबरेज कर दीजिए। अल्लाह इनकी इज्जतों की हिफाजत फरमाइए, ईमान की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह इनकी जान की हिफाजत फरमाइए। रब करीम इनकी नेक मुरादें पूरी फरमा दीजिए, इनके कामों में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर कर दीजिए, दिलों की परेशानियों को हटा दीजिए। मेरे मौला कदरदानों का साथ अदा फरमाइए, अल्लाह बेकदरों से महफूज फरमाइए, अल्लाह बेकदरों से महफूज फरमाइए, अल्लाह हमारी इन बच्चियों औरतों को बेकदरों से महफूज फरमाइए। रब करीम रहमतों का मामला फरमाइए। अल्लाह जो औलाद नरीना की तलबगार उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेकुकार बना, फरमा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, और जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं अल्लाह उनकी अच्छी तरबियत फरमा, और उनके माँ बाप के लिए फर्ज अदा करने आसान फरमा। रब करीम जो बच्चियों के रिश्तों की तलाश है अल्लाह उनके नसीब अच्छे फरमा। रब करीम रहमतों का मामला फरमा, अल्लाह करम का मामला फरमा,
اے اللہ آج یہ آخری لمحے لمحات ہیں اور آخری اوقات ہیں آخری دن کے، اللہ ہمارے اس وقت میں ہماری مغفرت فرما. رب کریم آپ کے در کی دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں، میرے مولا گندے ہیں ہم مجرم ہیں، اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے مولا آپ ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں. رب کریم جو گناہ ہم نے ارادے سے کیے معاف فرما، بنا ارادے کے کیے معاف فرما، اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے تمام اقوال افعال احوال جو آپ کے قرب میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، میرے مالک ہماری توبہ قبول فرما. ہم چاہے نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے، اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. رب کریم ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے، سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.